ओम शांति। आज आए हैं सभी, आज पहले से, आज कल की मुरली सुनी थी, तपस्या को क्या कहा बाबा ने? वाह, बड़ा जल्दी उत्तर दिया। तपस्या है समारोह। समारोह में तो आनंद होता है ना। कई लोग यहाँ अपनी तपस्या को सूखी तपस्या बना देते हैं, बैठे हैं टाइट होके ध्यान लगा रहे हैं, उसका योग नहीं। गीत में भी था, प्रभु से मिलन मनाते रहो। ये तो मिलन है, और मिलन बहुत आनंदकारी होता है। किसी समारोह में भी मिलन ही होता है ना, सब मिलते हैं। भगवान से मिलन है, ये है हमारी योग तपस्या। तो इसको समारोह कैसे मनाएं, थोड़ी सी इस पे चर्चा करेंगे, ये सहज योग हो जाए। दूसरी चीज थी, ये जीवन ईश्वरीय मौजों में बीते। याद है ईश्वरीय मौज कहाँ चली जाती हैं? वो बहुत खुशियों में जीवन बीते। ये कल की बाबा की मुरली कुछ बातें थी। सभी अपने से चिंतन करेंगे, हमें इस जीवन को ईश्वरीय मौज में बिताना है, आनंदों में बिताना है। जैसे सदाई हम समारोह में हैं, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? बहुत अच्छा चिंतन। चिंतन किसका नहीं चलता? बहुतों का नहीं चलता। कहते हैं हमसे तो चिंतन होता ही नहीं, व्यर्थ का चिंतन होता है, तो जगह ही नहीं बचती अच्छा चिंतन करने के लिए, ताकत ही नहीं बचती। चिंतन का सुख भी बहुत बड़ा सुख होता है। जो मनुष्य बाह्य मुक्तता में रहता है या व्यर्थ में, उसका चिंतन नहीं हो सकता। उसका चिंतन तो व्यर्थ की ओर ही ज्यादा चलता है। तो हम सभी यदि परमात्म प्रेम में मग्न होने का थोड़ा थोड़ा भी अनुभव करने लगे, तो ये जीवन ईश्वरीय मौजों से भर जाएगा। माताएं आते रहती हैं रोज मिलने, आज भी आई, छोटे ग्रुप आए, पर माताओं की अपनी समस्याएं हैं। अब मुझे तो माताओं से ही पता चलता है माताओं की क्या समस्याएं होती हैं, बच्चों की कई समस्याएं, प्रैक्टिकल में वो समस्याएं होती हैं, वो जिसके भी सामने आएंगी उसको मूर्छित करती रहेंगी, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हम अपने को परमात्म प्रेम में भी मगन करना सीखें। और किसी से भी प्रेम कब बहुत ज्यादा होता है? जब उससे प्राप्तियां ज्यादा हों। लगाव भी प्राप्तियों के बाद ज्यादा हो जाता है ना। अपनापन बहुत हो, उसने समय पे मदद की हो बहुत ज्यादा, निकाला हो हमें कहीं से मुसीबत से, तो उससे बहुत प्यार हो जाता है। तो आज हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे, आप सब इस चिंतन में हिस्सा लेंगे। क्लास तो आपकी बहुत होती रहेंगी, भट्टी वाले जो भी हैं, कौन कौन बैठे भट्टी वाले? अच्छा थोड़े, बाकी सेवाधारी? सब सेवाधारी हैं, ठीक है। मुझे सेवाधारियों के लिए बुलाया था, भट्टी वालों की तो कल से शुरू ही होगी, मैं भी आऊँगा परसों। हाँ वही ना, कहा देर से पूरा हुआ नहीं, बेचारे बैठे बैठे भी तो थक गए होंगे, सुन सुन के भी तो थकता है ना मनुष्य, बहुत सुनेगा तो कई तो इतना ज्यादा सुनाते हैं कि सुनने वाले सोचते रहते हैं जल्दी बंद हो जाए यार। मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा अभी। आप सभी चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा, सेवा में मजा आ रहा है, भगवान के यज्ञ की सेवा का मौका मिला। क्या हो जाती है ये सेवा? पुण्य। हम सब कौन हो गए? बोलो बोलो, पुण्य आत्माएं। बहुत सुंदर संकल्प है ये, करके देखना जरा, रटने के लिए नहीं, मैं पुण्य आत्मा हूं। भगवान ने अपने यज्ञ में सेवा करने का अवसर दिया है। ये मौज की जीवन है ना, घर की जीवन में और यहाँ की जीवन में कितना अंतर। हाँ, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। घर में तो क्या क्या चिंतन चलता है मनुष्य का सारा दिन। आज एक बच्ची की ऐसी कहानी आई, जन्मते ही, अब वो जो नर्स थी उसको दो बच्चों को अटेंड करना पड़ रहा था, दोनों साथ साथ रूम में। तो इस बच्ची का जब जन्म हुआ, उसने उसको सिर को पकड़ के जो बाहर किया ना, तो थोड़ा ज़्यादा दब गया, वो ही जल्दी में थी, ज़्यादा दब गया तो किसी को तो पता नहीं चला, पर बच्ची के ब्रेन का विकास ही नहीं हुआ। मैंने पूछा आयु कितनी, 27 साल, दिख रही थी 12 साल की। अब माँ बाप चिंतित बेचारे, क्या करेंगे भाई इसका, इसके भविष्य की हमें बहुत चिंता है। अब एक छोटी सी गलती से एक बड़ी समस्या हो गई उनकी, और भी उन्होंने बातें बताई, चिंता होना बड़ा स्वाभाविक सा है। मैं सोच रहा था इसलिए बेचारे यहाँ आए, नहीं तो बाबा की ओर थोड़ा ही देखते हैं, साहूकार परिवार है, बाबा की ओर वो देखते नहीं है। मैंने कहा हो सकता है प्रभु प्लानिंग चल रही हो तुम्हें इधर लाने की, जरा किसके रिलेटिव थे तो आ गए थे। तो घरों में जो समस्याएं हैं उससे बाबा ने हमें मुक्त किया, और आप सब अपना पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए यहाँ आ गए हैं। बहुत खुशी है ना, निश्चिंत जीवन, कार्य भी करते हैं और निश्चिंत जीवन भी है, और निश्चिंत जीवन कलयुग के अंत में बहुत बड़ी चीज है। कोई ना कोई चिंताएं मनुष्य को पकड़े ही रहती हैं। अब बोलो बाबा से क्या क्या प्राप्ति हुई, उसकी लिस्ट बना लेना, जो लिख रहे हैं लिस्ट बना लेना, बाकी थोड़ा बहुत याद कर लेना। और अगर उसको सवेरे आंख खुलते ही उनमें से 2-4 बातें भी याद आ जाएंगी, तो सवेरे का समय आनंद में बीतेगा, न नींद न व्यर्थ कुछ नहीं चलेगा। बोलो पहली प्राप्ति, बोलो बोलो, उमंग से बोलो ना। पहली प्राप्ति तो वो ही जो सब प्राप्ति कराने वाला है, स्वयं भगवान मिल गया। अब आपके मुख से अगर सुनते होंगे कहेंगे लोग इस माता को भी इन्हें बहका दिया है, भगवान भला मिलता है ऐसे, भाग्य विधाता मिल गया। जिसकी आज तक पूजा करते थे, जिसको बुलाते थे, जिसका आह्वान करते थे, जिसके आने की राह तकते थे, वो हमारे सम्मुख आ गया, सबसे बड़ी प्राप्ति। तो सवेरे उठ के जरा याद कर लेना जो कभी स्वप्नों में भी नहीं सोचा था, जिसके लिए न जाने क्या क्या करते थे। कोई तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, मैं तो पहली बार देखा, मैं भी गोवर्धन पर्वत देखने गया, मैं कहा क्या है ये पर्वत, इसको उठाया था भाई, छोटा सा है या बहुत बड़ा सा है, देखा तो वो तो 22 किलोमीटर का घेरा है, पर्वत तो ऊंचा नहीं है, एक आध नीचे दब गया है। कई लोग उस पर्वत की परिक्रमा लेट के, पेट छिल गए बेचारों के, कईयों को गद्दे दे दिए थे, गद्दा बिछाया उस पर लेटे, निशान लगाया, फिर गद्दा आगे किया, फिर लेटे। अब 22 किलोमीटर कितने दिन लगेंगे, 1 किलोमीटर भी एक दिन में पूरा होना मुश्किल है उनका, थक जाते हैं, पेट छिल गए किसी की, ये छिल गया है। हम सोचते थे, हम खास ही रिक्शा में बैठ के गए देखने के लिए, तो कोई और ढंग से चल रहा है, कोई और ढंग से चल रहा है। मैं सोचा इधर भगवान के बच्चे मौज मना रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, मज़े से सो रहे हैं, कुछ न मिले शिकायत भी कर देते हैं, आज दूध नहीं मिला तो कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई, भक्ति में कितना कष्ट और भी देखा मैंने। यहाँ भी एक बार हम कहीं जा रहे थे तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक सन्यासी और फिर उसका सामान रखा हुआ, एक दो तीन लोग उसके साथ, वो भी ऐसे लेट लेट के। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, किसी तीर्थ का नाम बताया, वहाँ तक जाएंगे। मैंने कहा कितना दिन लगेंगे, खाना पीना खाते हैं या लेटे लेटे ही खा लेते हैं? कि नहीं वो तो खाते हैं। छुड़ा दिया ना बाबा ने आकर, ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है। धर्म के धक्कों से छुड़ा दिया और सत्य धर्म पर लाके खड़ा कर दिया, अपने स्वधर्म की याद दिला दी, जो धर्म सबसे बड़ा था जो लोप हो गया फिर से याद दिला दिया, वो हमारे सामने रख दिया, स्थापित कर रहे हैं, हमें उसका बना दिया हिस्सेदार। मैं जब समर्पित होके आया तो बहुत खुशी रहती थी, एक विचार होता था। दादी जन की यहाँ थोड़ा थोड़ा रहती थी, बाबा अव्यक्त हो गए, 3 मास 2 मास 4 मास उसका मन नहीं लगता था सेंटरों में, यहीं आ जाती थी। तो छोटी छोटी क्लास होती थी, क्लास में थोड़े लोग होते थे, संख्या ही बहुत कम थी और सदा तो होते नहीं थे, कभी 10 बैठे कभी 8 बैठे। क्लास से छोटी कराती थी कि देखो मुझे एक बात वो अब तक याद है, देखो संसार में इस बारे में कितने भ्रम हैं और मान्यताएं हैं कि भगवान ने सृष्टि कैसे रची और हम भगवान को सृष्टि रचते देख रहे हैं। बड़ा नशा चढ़ गया, मैंने इसमें जोड़ लिया कि सृष्टि रचना करने में हम भी उसके साथ आ गए हैं, उसने हमें अवसर दे दिया, ये बहुत सुंदर, तो बहुत बड़ी चीज है ना। कल एक बीके मेरे पास आया, अच्छा पढ़ा लिखा, रिटायर हो गया था, कहा आपने कभी सोचा भगवान ने पहला मनुष्य कैसे बनाया? अब मैं उसकी सुनना चाहता था ये क्या कहता है, कि मुझे पता चल गया है स्त्री को कैसे बनाया, पुरुष को कैसे बनाया, मिट्टी का ही क्यों बनाया? मैं उसे पूछा मिट्टी थोड़ा, इसमें तो ब्लड भी है, नस नाड़ियाँ सब कुछ है, कितना, ये तो फैक्ट्री है बहुत बड़ी, मिट्टी से थोड़ा ही बनी हुई है। मैंने कहा आपने बाबा का ज्ञान नहीं लिया? कि लिया है, 8 साल से ज्ञान में हूँ। मैं कहा उसने कब कहा मैंने ये सृष्टि बनाई, ये तो अनादि अविनाशी है, फिर भी कभी तो बनाई होगी, मैं बताऊंगा, टाइम देना। अब सुनता भी कम था, अब मैं जो कहूँ वो जोर से बोलना पड़े। मैंने कहा ठीक है, जब दोबारा हो गए तब चर्चा करेंगे। कितनी फिलोसोफी है इंडिया में, हम देख रहे हैं भगवान युग को कैसे बदल रहा है, साथ में वो भी जो पढ़ते थे ना, हिंदी में तो बहुत ज़्यादा है, आपकी अलग अलग भाषाओं में भी होगा, कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है भगवान आते हैं, मतलब वैसे हिंदी में है, एक तो गीता में है, और अधर्मियों का विनाश कर देते हैं, धर्म की स्थापना कर देते हैं। अब हम ये भी देख रहे हैं कि इस युग परिवर्तन में अधर्मियों का संहार कैसे होगा, होगा वो भी, धर्म की स्थापना तो हम देख ही रहे हैं, तो बहुत बड़ा भाग्य सब कुछ देखने को मिला। आप में से बहुतों को तो पता नहीं होगा, 18 पुराण हैं भारत में, उनमें बहुत सारी कहानियां हैं, भागवत है और कुछ ग्रंथ हैं, वो सब कहाँ की हैं? अधिकतर वो संगम युग की है अधिकतर। तो हम सब ने किया, ऋषियों ने वो लिखा, तो हम हीरो एक्टर हैं, कितना बड़ा पार्ट हमें दे दिया बाबा ने। चलो आगे, भगवान आया, उसने ज्ञान दिया, हम वो सब चीज देख रहे हैं जो देखी नहीं जा सकती थी। ठीक बात है या नहीं? जो देखी नहीं जा सकती थी वो हम सब देख रहे हैं। भगवान आए तो क्या दिया उसने? दूसरी बात बहुत बड़ी है, वो भी आप सबको मिल रहा है, ज्ञान दिया। ज्ञान की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। ज्ञान कोई छोटी चीज थोड़ा ही है, इसी सत्य को तो ढूंढ रहे थे, पता ही नहीं चलता था, ये भी नहीं पता चलता था मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ। मुझे याद आती है वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे ना, आर्य समाज वाले थे तो गुजरात के, संन्यास लेकर उधर पहुँच गए, गुरु की तलाश में थे, कहा एक गुरु ब्रजानंद जी हैं, नेत्रहीन हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको अपना गुरु बना लो। पहुँच गए उनकी झोंपड़ी में, खटखटाया, कहा कौन है, कि यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ, खोल दिया दरवाजा, तुम ठीक आदमी हो, आ जाओ। उसे अपना शिष्य बना लिया और कितने ग्रंथ लिखे गए ये जानने के लिए मैं कौन हूँ। और बाबा ने आके पहली लाइन में साफ कर दिया, आधे घंटे के कोर्स में सब बता दिया जाता है, कहाँ से आए थे, मुक्तिधाम कहाँ है। और जो देवकुल की आत्माएं हैं उन्हें ये समझने में देर नहीं लगती, उन्हें लगता है यही तो सत्य है। लगता है या नहीं, आप सबको भी लगा हुआ, देर थोड़ा ही लगी, परमधाम ब्रह्मलोक है तुम्हारा घर, मैं भी वहां रहता हूँ, फट से मान लिया। अब तक पता ही इनका कहाँ रहता है, पता नहीं था तो कह दिया था छोड़ो सभी जगह रहता है, खेल खत्म, लड़ाई खत्म करो तुम। इसीलिए तो ये सिद्धांत बने ना, क्योंकि कुछ पता नहीं चला, ढूंढते रहे, खोजते रहे, शास्त्रों में तर्क होते रहे, कुछ पता नहीं चला। तो ज्ञान बहुत बड़ा मिला है। ज्ञान से क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट बात है, हैं? नहीं, समय तो छोटी, वो तो छोटी सी चीज है। हाँ ठीक है, बोलो। और ज्ञान से हाँ, बहुत अच्छा अच्छा बोल रही माता है, बोलो। देखने की दृष्टि बदल गई, सोचने का तरीका बदल गया, जीव जीने की कला बदल गई। और ज्ञान से क्या हुआ भाई लोग बताएं? हैं? एक बहुत बड़ी चीज जिस पे हमें ध्यान देना है, वो प्राप्ति जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी, हमारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि बन गई, ईश्वरीय बुद्धि बहुत बड़ी चीज है, दिव्य बुद्धि। अब हमें अपनी बुद्धि को ऐसी ईश्वरीय बुद्धि बना लेना है कि ये चारों युग हमारे साथ रहे। जैसा चिंतन अब हम शुरू करेंगे वही चिंतन हमारे साथ चलेगा। जितने विचारों को महान हम इस समय बना लेंगे, हर जन्म में हमारे महान विचार रहेंगे। द्वापर से तो महान विचारों की जरूरत होगी ना। ठीक है, सत्युग त्रेता में इन चीजों का कोई महत्व नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है कि विचार छोटे हैं या बड़े हैं। द्वापर से ये सब शुरू हो जाएगा, महान विचार वाली आत्माएं महान कहलाएंगी। आगे हो जाओ भाई लोग। महान विचार वाली आत्माएं महान कहलाएंगी, बहुत कुछ संसार को देंगी। तो हम अपनी बुद्धि के विकास पर बहुत ध्यान देंगे। जो भी भट्टी वाले अभी आए हैं वो ध्यान देंगे, 3 दिन की भट्टी में बुद्धि के लिए नया माल खजाना लेकर जाना, खुशी लेकर आए हैं बाबा हमारे लिए, और वो खुशी भी अविनाशी। बाबा ने कहा ना, अविनाशी, बाप जो चीज देता है वो सब भी अविनाशी हो जाता है, लेकिन अविनाशी बनाना हमारे अपने हाथ में, ये हमें देखना है। हमारी खुशी अगर टूटती रहेगी, जाती रहेगी, छोटी-छोटी बातों में हम उलझते रहेंगे, तो फिर वो अविनाशी नहीं बनेगी। ये जीवन ईश्वरीय मौज की जीवन है या नहीं? या अभी भी मौज की तलाश है? कुमार बैठे कहीं बताओ, मौज की तलाश है? ये न होता, ये हो जाता तो बड़ी मौज होती, सोचते हैं कई लोग। मौज की जीवन है, बाबा के शब्दों में, कईयों ने इस मौज की जीवन को मूंज की जीवन में बदल दिया है। मूंज माना कन्फ्यूजन। अब बाबा से सीधा रास्ता मिल गया, अब तो हमें सीधे रास्ते पे चलते रहना है। इतना अगर कर लें तो मौज ही मौज है, फिर भी रास्ते ढूंढते रहते हैं ना। बाबा ने सीधा रास्ता दिखा दिया, फिर भी रास्ते ढूंढते रहते हैं कई लोग। ठीक कहा मैंने या नहीं? ढूंढते रहते हैं, आत्मसंतोष नहीं होता। तो अब चिंतन कर ले, हमें अपने इस जीवन को ईश्वरीय मौज में बिताना है। कलयुग में न जाने हमारे जीवन कैसे बीते होंगे, बीते हैं, थोड़े खराब बीते हैं, दुखों में बीते हैं, संघर्षों में बीते हैं, लेकिन अब हमें इस जीवन को संघर्षों से मुक्त ईश्वरीय आनंद में बिताना है। बस ये बात याद रखेंगे, बाबा ने सीधा सा रास्ता दे दिया है, हमें तो केवल चलना है। जैसे सरकार कहीं सुंदर सड़क बना दे, बस हमें उस पर चलानी है, गाड़ी टू व्हीलर या पैदल चलना, हमें तो चलना है। हमें थोड़ा को देखना पता भाई ये रास्ता यहाँ से वहाँ जाना है उस जगह, बस हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी से हम मुक्ति प्राप्त होगी, इसी से देवलोक प्राप्त होगा, इसी से विकारों पर विजय प्राप्त होगी, इसी से समस्याएं नष्ट होंगी, इसी से घर घर में सुख शांति होगी। तो सीधा चलते चलना, सोच लेना बाबा से मुझे क्या क्या मिला। कईयों का जीवन ही बदल दिया बाबा ने, कईयों को पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना दिया, प्रैक्टिकल हो गया कईयों के साथ। कुछ समझते थे हम तो बहुत पापी थे, पुण्य के मार्ग पे आ गए। तक लिस्ट बनाना और उसको याद किया करना। दो बातें याद रखना मधुबन में आके रोज सवेरे, करना है सबको। सवेरे के लिए बाबा का एक महावाक्य याद रखना, सभी ध्यान से सुन ले बच्चे, स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। प्राप्ति न भी याद आए सवेरे, क्योंकि जब मनो नींद से उठता है, कभी नींद का नशा, कभी ब्रेन डल, कभी किसी चीज का इफेक्ट होता है ब्रेन पे, 5-7 स्वमान याद कर लेना, ऐसे रिपीट कर लेना, उसे ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। मैं एक महान आत्मा हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, कितना भाग्यवान हूँ, बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया, मैं इस देव देवी हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं विश्व कल्याण का। 2 मिनट बहुत सारे स्वमान याद कर जाना, जागृति आ जाएगी। क्योंकि सवेरे उठ के ये बहुत जरूरी होगा कि एक संकल्प व्यर्थ की ओर न जाए। एक, मैं एक भी नहीं कह रहा हूं, एक, क्योंकि अगर उठते ही संकल्प किसी व्यर्थ की ओर चला गया तो लाइन लग जाएगी। थोड़ा अपने पे ध्यान देना शुरू में ही, इसलिए शुरू में ही आंख खुली और स्वमानों की, बाबा के तो ये भी सब थे, स्वमानों की माला स्मरण करने लगो उठते ही। ये सब अव्यक्त महावाक्य हैं जो रिपीट होकर आ रहे हैं अभी संडे को। तो इससे अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। और जिस बात से हमने शुरू किया था अब उस पर आ जाते हैं। तपस्या समारोह है, कल कहा था बाबा ने, कोई रास्ते में होंगे, कोई चले होंगे घर से, तपस्या समारोह है। देखो कैसे समारोह मनाएंगे, सवेरे से ही आप शुरू कर देना है समारोह, छोटे छोटे अभ्यास, ताकि ये योग हमें मनोरंजन लगे। योग ऐसा ना लगे तप कर रहे हैं, अग्नि के बीच बैठ गए और शरीर को कष्ट दे रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, भोजन नहीं खा रहे, तपस्या करनी है, ऐसा नहीं। आनंद समारोह, बाबा आ गए हैं मेरे सिर पे हाथ रख दिया है। एक मिनट बस लीजिए, है ना। उठते ही भगवान से मिलन हो जाए तो जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। बाबा आ जाओ, मैं कई बातें आपको बता रहा हूँ सवेरे के लिए, जो आपको याद आ जाए वो कर लेना। कल से आके मेरे सिर पे हाथ रख दिया है, हाथ से बहुत सुखदाई किरणें फैलने लगी हैं, मुझ में तन मन में समाने लगी। कभी बाप दादा सामने आगे मुझे दृष्टि दे रहे हैं, कभी बाबा ने हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं, चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ हूं, हजार भुजाओं सहित तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। जागृति आएगी, भय खत्म होगा। मैं आपको योग का एक मनोरंजक तरीका बता रहा हूं, वहां नहीं बैठेंगी माताएं, वहां नहीं बैठेंगी। योग का एक मनोरंजक तरीका बता रहा हूं, अब उन्हें ना देख के मुझे देखना। आप चलते रहो चलते रहो, नहीं तो माताएं आपको ही देख रही। सुनो, अब मेरे एक और ऊपर ब्रह्मा मां है, ये बाबा के द्वारा बताया हुआ अभ्यास है, कभी का मनोरंजक अभ्यास है ये। उनके मस्तक से शीतल और प्यार के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, फुवारा पड़ रहा है, फाउंटेन प्यार का और शीतलता का, माँ का यही काम होता है ना। दूसरी ओर ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, उसे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। जितनी देर आप कर सको, 5 सेकंड तो 5, 10 सेकंड, 15, 20, फिर बढ़ा देना, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार ऐसे 5 बार कर लेना। ये सब मनोरंजक तरीके हैं योग के, और इनसे व्यर्थ भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है। मैं मनोरंजक तरीके बता रहा हूं जो आज तक बाबा ने बताए हैं। अव्यक्त बाबा का जब पाठ चलता था, और कई बार संदेशों में बहुत अच्छी अच्छी बातें आती थी, मैं फरिश्ता हूं, उठकर चला गया सुख संवतन बाप दादा के सामने। ज्यादा सोचना नहीं, उड़ू कैसे, कभी सोचते ही रह जाओ, हमसे तो उड़ा ही नहीं जाता। उड़ने का अर्थ होता है मैं आपको कहूं हम सब यहां बैठे हैं, जाके बाबा के रूम में बैठूं 1 सेकंड में, देर लगेगी कि यहां से उठ के चलें, रास्ता ढूंढें, चप्पल पहने कहां रखी, फिर वहां देखें भीड़ तो नहीं है, करेंगे ऐसे, यहाँ है वहाँ है, बस यही सूक्ष्म प्रैक्टिस है, कुछ नहीं, इसको कॉम्प्लिकेटेड जटिल नहीं बनाना है, सहज। मैं फरिश्ता हूँ बाबा के पास, बाबा वरदान दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उनसे बातें कर लो, एक एक मिनट करो, तुमने हमें क्या क्या दिया उसकी शुक्रिया कर लो, फिर मैं फरिश्ता वापिस आ गया। अगली बार देखो, मैं फरिश्ता हूं, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, अपना ऐसा रूप बनाओ। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसमें, बाबा ने सिखाया था, ऐसी प्रैक्टिस करो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये सुंदर हो जाएगा और इसकी अनुभूतियां होने लगेंगी। और मैं फरिश्ता उड़ते उड़ते चला गया सूक्ष्म लोक, बाबा से गले मिल लिया, बाबा ने मुझे गले से लगा लिया और सोख लिए मेरे सारे दुख दर्द। याद करो बाबा ने कहा था, मैं ब्लोटिंग पेपर भी हूं, सोखता सोख लेता हूं, तुम्हारा सब खींच लेता हूं। गले लगा के कर दिया मुक्त, और मैं मुक्त होकर वापिस। पसंद है, यह मैं ही बोल रहा हूं, कर तो रहे ये माताएं भी साथ साथ, करते रहना ये। कभी मैं आत्मा यहां से निकली, अपने को आत्मा देखेंगे पहले, और एक संकल्प देंगे, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, किरणें फैल रही। हम बिंदी आत्मा नहीं जिसे कुछ निकल रहा हो लाइट, हम ऐसी तेजस्वी आत्मा है जिसकी लाइट दूर दूर तक फैल रही है। उठकर चली गई परम धाम बाबा के पास, देखो बाबा है वहां, ज्ञान सूर्य परम तेजस्वी सर्वशक्तिवान, उसके पास जाके बैठ गई। अब कोई सोचना नहीं मुझे 5 मिनट बैठना, मैं 5 सेकंड कह रहा हूं कम से कम, 5 सेकंड बैठ जाओ, फिर 10 बैठो, फिर 20 बैठो, ऐसे। फिर मैं आत्मा वापिस आ गई, जैसे वहां गई चार्ज कर दिया बाबा ने, चार्ज होकर वापिस आ गई। 2-4 बार कर लो ड्रिल, इसको रूहानी ड्रिल कहते हैं। कभी मैं आत्मा परमधाम से नीचे उतरी, तो कहाँ उतरी थी पहले, स्वर्ग में, देवलोक में, ये था मेरा स्वरूप देवता, सिर पर डबल ताज था, प्रकृति भरपूर सौंदर्य से परिपूर्ण, अथाह धन संपदा, सोने हीरो के महल, ये था मेरा जीवन, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा थी मैं। अब जन्म लिए, एक देह छोड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, फील करो मैं आत्मा कैसे, देव शरीरों में से बदलती बदलती आई नीचे, कभी देवता कभी देवी, कभी देवता कभी देवी, उतरते उतरते द्वापुर में, फिर देह लिए छोड़े लिए छोड़े, अब इस शरीर में हूँ। अब मुझे वापिस ले जाने के लिए स्वयं भगवान आ गए हैं। हम भूल गए थे घर का रास्ता, अब केवल रास्ता दिखाने ही नहीं आ गया, मैं साथ चलूंगा, इधर उधर ना हो जाओ तुम, फिर कहीं इधर उधर चल जाओ, इसलिए मैं साथ ले चलूंगा तुम्हें। अब मैं जो आपको बात कहना चाहता हूँ वो ये, और इस बात को जो समझ लेंगे वो अच्छे योगी बन जाएंगे। ध्यान से सुन रहे हैं सभी, इसी अभ्यास में चिंतन भी है, क्लियर है। जो हमने अभ्यासों की अभी चर्चा की, इनके साथ चिंतन भी है। बहुत लोग योग में चिंतन को बंद रखते हैं तो बस व्यर्थ की ओर तेजी से मन भाग जाता है। ये चिंतन ही बाकी चिंतन को समाप्त करेगा। ये संकल्प है ना, मैं आत्मा यहां हूं, उड़ती जा रही हूं परम धाम में बाबा के पास, बैठ गई ऊपर बाबा है, ये संकल्प करेंगे आप, धीरे धीरे स्थिरता बढ़ती जाएगी, वहां पे ही बढ़ेगी। देखो हमारा मन तो दौड़ता है ना, अब हम अपने मन को खुद दौड़ाएंगे, ये मन को दौड़ाना हुआ ना भिन्न भिन्न अभ्यासों में, तो वो आप ही नहीं दौड़ेगा, फिर वो हमसे पूछेगा आप कहाँ जाना है बताओ, उसे भी आदत पड़ जाएगी और हमें भी, हम दौड़ाएं ना उसे, दिशा दें, नए नए संकल्प दें, तो बहुत अच्छे स्वमानों से प्राप्तियों को याद करते हुए अपने को प्रभु प्रेम में मगन करने का अनुभव करके जाएंगे मधुबन से सभी। और चाहे आप सेवादारी हैं, चाहे भट्टी में आए हैं, एक अच्छी प्लानिंग लेकर जाएंगे पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ में सफल वही होते हैं जो एक प्लानिंग को लेकर पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुतों का प्रश्न है। आज ही मेरे पास ऐसे 3 लोग आए होंगे जिन्होंने यही पूछा, जब आए थे बहुत नशा, बड़ी खुशी, बड़ा उमंग, अब पता नहीं कहाँ चला गया। चला गया क्योंकि उसको कायम रखने की प्लानिंग नहीं की। फिजिक्स में एक चीज पढ़ाई जाती है, हर चीज नीचे ही उतरती है आप ही। वहां तो पढ़ाया जाता था कि लोहे का टुकड़ा भी है ना इतना सा, वो रखे रखे भी वहां तो कहते हैं करोड़ों साल में खत्म ही हो जाएगा, धीरे धीरे उसके कण बाहर निकलते रहेंगे। हर चीज में पतन तो ऑटोमेटिक है, गिरावट, चढ़ाई के लिए कुछ करना पड़ता है। तो हम एक प्लान बनाएंगे, सरल प्लान अपने पुरुषार्थ का आप स्वयं बनाएंगे तो बहुत अच्छी उन्नति होगी। और ये जो शिकायत रहती है कि नशा उतर जाता है, खुशी कम हो गई है, वो तो नेचुरल है। जब भगवान पहली बार मिलता है तो खुशी के पंख लग ही जाते हैं, पर फिर रोज मिलना वो अपने खुद के हाथ में होना चाहिए। फिर हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधनाओं से उसे मिलन के अनुभव करें तो जीवन ईश्वरीय मौजों में बीतेगा, तपस्या समारोह बन जाएगी। इसको जीवन से जोड़ देना है, इसको कर्मों से जोड़ देना है। बस ये कला जिसने सीख ली कि अपनी तपस्या, अपने योग अभ्यास को कर्मों से जोड़ दें। अब माताओं का प्रसन्न रहता। अभी लास्ट बात कर रहा हूँ, एक माता भी श्याम को आई, भाई जी पति ज्ञान में नहीं चलता, गुस्सा बहुत करता है, क्या करूँ। मैंने उसको कहा, मैंने एक बात माताओं को कम से कम 1000 बार कही है क्लास में, जब भोजन बनाओ तो ये अभ्यास करो, बताओ कौन सी। थी ने आपसे नहीं पूछ रहा, तो माता देखे क्या बताया। कहा मैं तो गीत बजा लेती हूँ। मैंने कहा वो भी अच्छा है, गीत बजा लो बाबा के, कुछ तो याद रहेगा। फिर मैंने उसे कहा मैं परम हाँ सुना तो था लेकिन भाई आप अपने घर में पवित्र भोजन बनाओगे वो भोजन दुख भंजन भोजन बन जाएगा। ओम शांति।